करणानियोग पुस्तक के आधार से यानी ये जो करणानियोग परिचय पुस्तक है उसमें से हम 20 प्ररूपणाएं सीख रहे हैं जीव की। अभी हमने देखी थी ना, अभी वरुण और ये वैशालिनी, वरुण ही नाम है, क्या नाम है, हाँ, तो आपने अभी जो सुनाई थी अभी हमें 14 मार्गनाएं, और सिद्धार्थ ने 20 प्ररूपणाएं भी सुनाई थी। इन सारों का हम यहाँ वर्णन, इनका क्या स्वरूप होता है, मार्गणा किसे कहते हैं, आदि आदि बातें हमने यहाँ सीखी है। तो अभी तक हमने जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये तो प्ररूपणाएं देखी है, और मार्गणा का भी हमारा अभ्यास चल रहा है। मार्गणा का अर्थ होता है खोज या अन्वेषण, कि जीव तो अरूपी है तो उसको कैसे पहचाना जाए, तो उसके कितनी इंद्रिया है, यानी अभी तो शरीर के संयोग में है तो कैसा उसने शरीर पाया है, उसके कितनी इंद्रिया है, उसके अलग अलग भाव कैसे है, वेद कितने हैं, ज्ञान किस प्रकार से, कौन से कषाय वाला जीव है, इत्यादि अपेक्षाओं से, विभिन्न अपेक्षाओं से सारे ही संसारी जीवों के हम विभाजन करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, एक एक अपेक्षा से अलग अलग ग्रुप, दूसरी अपेक्षा लगाएंगे तो ग्रुप बदल जाएंगे, एक ग्रुप के जीव दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा और संयम मार्गणा भी देखी थी, दर्शन मार्गणा भी कल देखी थी, और लेशा मार्गणा का कुछ हमारा विषय चला था कल। तो संयम मार्गणा की अपेक्षा से जीवों के कितने भेद देखे थे, 7। दीपाली बता सकोगी? सामायिक छेदों के साथ बराबर है। वेरी गुड। ये प्रोषदोपवास, सामायिक व्रत और प्रोषदोपवास व्रत, वो पांचवे गुणस्थान की जो प्रतिमाएं हैं वो सामायिक के बाद वो क्रम से आ गया, कोई बात नहीं। ये सामायिक नाम का यहाँ क्या है, ये संयम है, और वो सामायिक नाम का व्रत था। इसमें कोई फर्क है आपको मालूम है क्या है? हाँ, मगर उसमें कुछ फर्क भी होगा ना, सामायिक व्रत भी है, सामायिक तप भी है, तो उसमें क्या फर्क है? हाँ मंदर, हाँ बोले कहो ना। देखिए जो सामयिक व्रत जो है पंचम गुण स्थान वर्ती जी, ये तो शुभोपयोग रूप है, व्रत है ना, और वो क्या है कि दो घड़ी है, जितना उसने टाइम नक्की किया है उतने काल तक समस्त परिग्रह और हिंसा का त्याग करता है वो, ये सब मन से वचन से भी बोल देता है कि अभी मुझे, यानी मन ही मन में, परंतु वो सब का त्याग करके बैठता है, एक आसन से बैठता है और वो ऐसा नक्की करता है कि अभी मैं किसी भी हालत में यहाँ से नहीं उठूंगा। तो फिर वो जितना उसने दो घड़ी का समझो मान लिया है, नक्की किया है, तो उतने काल तक वो तो वैसे तो है तो उसको, यानी उसका लक्ष्य तो शुद्धोपयोग में जाने का है, परंतु वो तो दो घड़ी तो शुद्धोपयोग नहीं होगा उसको, तो वहाँ तीर्थंकरों को नमस्कार होता है, वंदना होता है, 24 तीर्थंकरों के नाम लेता है, उनके स्तवन बोलता है, अन्य अन्य जो सारा है नमोकार मंत्र है, तो ऐसे इस तरह से वो रोज तीन बार दिन में सुबह दोपहर और शाम को दो दो घड़ी या जितना उसने टाइम नक्की किया है उतना एकांत में बैठकर तत्वों का चिंतन करता है। ये तो शुभोपयोग रूप है मुख्यतः से, और उसी काल में कभी कभी उसको शुद्धोपयोग भी हो जाता है, और सामयिक तप यानी वो मुख्यतः वहाँ शुद्धोपयोग की है, क्या है, क्योंकि मुनि के है वो, तो वहाँ तो हमने देखा था कि हर अंतर मुहूर्त में वो छठे से सातवें, सातवें से छठे वो चलता रहता है, तो वहाँ ये सामयिक तप और सामयिक व्रत। वो तो शुद्धोपयोग में ही जाने का ज्यादा, क्योंकि उनको तो अभी ऐसे प्रचुर संवेदन है, ऐसे बहुत प्रयत्न करते हैं कहना भी उनके लिए ठीक नहीं है, वो तो सहज है, मुनियों का हो या किसी का भी, चौथे वाले का, पांचवे वाले का भी, ऐसे बहुत ऐसा प्रयत्न करना है अभी अंदर जाना है, ऐसे कुछ नहीं होता, वो सहज होता है, तत्वों के चिंतन में गहराई में उतर जाता है वो, तो सहज तत्व का विचार छूट कर वो शुद्धोपयोग में अपना आत्मा का अनुभव कर लेता है। देखो ये लेशा मार्गना में हमने द्रव्य लेशा और भाव लेशा देखी थी, तो द्रव्य लेशा किसे कहते हैं हिंदुबेन, अकेले शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं, इतना ही सादा है, और भाव लेशा यानी जीव के जो परिणाम है, कोई से परिणाम तो कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, अकेले योग नहीं योग की प्रवृत्ति, यानी जीव जुड़ जाते है ना मन के द्वारा जानने में या शरीर की क्रिया में, उसने अवलंबन लिया ना उसमें कुछ उसका योगदान है ना कुछ, यानी कुछ जुड़ा हुआ है किस किस कारण, तो योग से हम कहते हैं कि कुमार ने मटका बनाया तो वो तो निमित्त है, तो निमित्त है तो उसका क्या हुआ उसने, तो उसका योग और उपयोग दोनों ही वो मटका बनाने में, वो घड़ा बनाने में लगे हैं, तो उपयोग कम समझते कि उसके ज्ञान भी वहाँ अटका हुआ है, और योग यानी ये जो प्रवृत्ति है आत्म प्रदेशों की, यानी उसने काय की क्रिया में अपने उपयोग को भी जोड़ा है और आत्म प्रदेशों का भी चंचलपना उसकी भी क्रिया जैसी होती है, तो जीव पर पदार्थ का कुछ नहीं करता, मात्र उसके योग और उपयोग वहाँ जुड़ते हैं, ऐसा कथन आता है शास्त्र में, तो ये योग समझना मनोवचन काय वाला योग। तो ये जो लेशा में तो हमने दोनों को मिलाकर लेशा का कषाय और योग की प्रवृत्ति दोनों मिलकर एक नाम है, उसका नाम है लेशा, तो उसके हमने छह भेद देखे थे, कौन कहेगा वरुण को याद है बोलो, छह लेशा के नाम, पहला कृष्ण है, आप बोलो, वेरी गुड, सिद्धार्थ आप बताओ, इसको क्या कहते हैं संक्लेश, बहुत संक्लेश परिणाम है उसको कहेंगे कृष्ण, जैसे बहुत रोना आता है ना कभी कभी, बहुत अंदर से ऐसी आतुरता हो जाती है, संताप हो जाता है, तो वो है कृष्ण तरफ की लेशा, जैसे नारकी जीव है वो क्या करते हैं आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ वेदना भी बहुत होती है, तो वो बहुत ऐसे तीव्र आतुरता में परिणाम है, इसको कहते हैं संक्लेश परिणाम, तो ये कृष्ण लेशा होती है, वहाँ नीचे के सातवें नरक में कृष्ण है, ऊपर ऊपर के नरकों में नील है, पहले में कपोत लेशा थी। तो इस तरह से अलग अलग लेशा के परिणाम होते हैं जीवन के। अब यहाँ मनुष्यों को तो 6 लेशाएं पाई जाती है, हमें भी ऐसे नहीं कि एक ही लेशा में हम हमेशा रहें, अपनी भी लेशाएं बदल जाती, कभी अपने परिणाम कैसे अशुभ बहुत हो जाते हैं, कभी शुभ हो जाते, उसमें भी कम की ज्यादा रहता है, अपनी कषायों की तीव्रता कम ज्यादा होती है, उस तरह से उसकी लेशा भी बदलती रहती है। तो ये 6 नाम तो हमने कल देखे थे, अब ये कौन से गुणस्थान में कौन सी लेशा होगी उसका प्रकरण अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ नीचे से वो तीसरे चौथा पैराग्राफ है ना, छोटे छोटे एक एक लाइन का, पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा पाई जाती है। देखो सम्यक दृष्टि जीव को भी 6 लेशाएं होती है, ये 6 लेशाएं मुख्य था यहाँ तो मनुष्य और तीजेंतन की अपेक्षा बताई। देवों में अलग अलग, जिस वर्ग में होगा उसकी लेशा अलग होती है, नरकों में जिस नरक में होगा वहां की लेशा अलग होती है, और ये जो वो तो आएगी बात, आगे बाद में बताऊंगी। हाँ हाँ देखो नवे ग्रेवे कर जाने वाले कौन है, मिथ्या दृष्टि है कि समय दृष्टि है, द्रव्यलिंगी, उनके आनंदानुबंधी कैसे मंद है कि यथा योग्य मुनि का आचरण पालते, ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए और कुछ किया, बिल्कुल जैसा शास्त्र शुद्ध आचरण है वैसे पालन करते, तो उनके वहाँ परिणाम भी वैसे है पालन करने, और वो चाहते भी है कि हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, परंतु अभी वो रास्ता स्वामित्व भी है, मिथ्यात्व सहित वाले है, तो ये भी शुक्ल लेशा वाले परिणाम है उनके। कोई बहुत रोना आएगा किसी के ऊपर, हाँ वो तो कृष्ण लेशा हो जाएगी उसकी, अलग हाँ बदलती रहती है। मैंने तो कहीं पढ़ा है, ये धवला का ही है या अन्य कहीं का है, तो उद्धरण पढ़ा था कि सर्वार्थ सिद्धि वहाँ तो 33 सागर तक शुक्ल लेशा ही है, वहां से कोई जीव यहाँ आकर जन्मा, मनुष्य में जन्मेगा वो, एक अंतर मुहूर्त में कृष्ण लेशा भी हो सकती है उसकी, ऐसे परिणाम हो सकते हैं, ऐसे जीव रोने के परिणाम या ऐसे कोई तीव्र आकुलतामय परिणाम, यानी अकेला झगड़ना क्रोध करना इसी को कृष्ण लेशा कहते, ऐसी बात नहीं है। कोई भी कषाय अति तीव्र जिसको संक्लेश कहते हैं, देखो पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा पाई जाती है, पांचवे से सातवें गुणस्थान तक, हमने देखा था ना पांचवे छठे सातवें यहाँ वहाँ, तो अभी शुभोपयोग भी कषाय मंद मंद होती है, विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि का अर्थ होता है कषायों की मंदता और ऊर्ध्वरूप गमन होता है, यानी अधिक अधिक विशुद्धि की ओर जाना, मंदता की ओर बढ़ना उसको कहते विशुद्धि, और तीव्रता की ओर आना उसको कहते संकलेश। तो पांचवे से सातवें गुणस्थान तक पीत पद्म और शुक्ल 3 शुभलेशा है, इसलिए हमने देखा था ना पांचवे छठे सातवें कोई भी जीव मरकर नियम से स्वर्ग में जाएगा, यानी जिसने आयु बांधी है, अभी जो उसी भव में मुख्य जाने वाला है तो वो मरता ही नहीं है पांचवे छठे सातवें में, वो तो निर्वाण को ही जाएगा, ख्याल है ना। तो पांचवे छठे सातवें वाले 3 शुभलेशा वाले हैं, आठवें से 13वें गुणस्थान तक 1 शुक्ल लेशा होके, यानी श्रेणी वाले जो जीव है, उपशम श्रेणी वाले हो या शपक श्रेणी वाले हो, उनको तो शुक्ल लेशा होती ही है, पर हमने कल ले देखा था कल कि 10वें गुणस्थान तक तो कषाय है, और बाद में 11वें 12वें 13वें में तो कोई कषाय नहीं है, फिर भी वहाँ योग है, इसलिए वहाँ जो शुक्ल लेशा कही है वो कैसी है, उपचार से कही है, यानी कहने के लिए बताइए बस, वहाँ कोई कषाय का कार्य नहीं हुआ है, परंतु पूर्व में कषाय थे, अब कषाय निकल गए हैं, योग बाकी है, इसलिए उसको भी शुक्ल लेशा कहने में आते हैं। अब दूसरे शब्दों में कहना हो तो 3 अशुभ लेशा पहले 4 गुणस्थानों तक ही होगी, 6 लेशाएं होती है और ऊपर तो शुभ लेशा होती है, यानी शुक्ल ये 3 जो है तेज पद्म और पीत पद्म कहो या तेज पद्म कहो, पीत पद्म और शुक्ल, यानी उसका अर्थ क्या होगा कि 3 अशुभ लेशाएं कहाँ तक पाई जाती है, कौन से गुणस्थान तक, चौथे तक ही, उसके ऊपर 3 अशुभ लेशाएं कभी नहीं पाई जाएगी, शीत और पद्मलेशा पहले से सात गुण स्थानों में होती है, यानी एक से सात गुण स्थानों में होती है। यानी जो पीत और पद्मलेशा है वो सातवें के ऊपर आठवें नौवें में कहीं नहीं पाई जाएगी, पहले से सातवें तक ही पाई जाएगी। अभी हमने क्या देखा, अशुभ लेशाएं कहाँ तक होगी, पहले से चौथे तक, उसके ऊपर नहीं। पीत और पद्म कहाँ है, पर पहले से सातवें तक, हाँ पहले को भी लेना। और शुक्ल लेशा कहाँ से कहाँ तक होगी, वेरी गुड, पहले से तेरहवें तक, हाँ शुक्ल लेशा पहले से तेरहवें गुणस्थान में होती है। और लेशा रही चौदहवां गुणस्थान है, चौदहवें गुणस्थान का नाम क्या बेटा, अयोग केवली, वहाँ योग ही नहीं है तो लेशा का कोई सवाल नहीं, वो लेशा रहित है। उनको कौन सी लेशा होगी, लेशा रहित, परंतु हमने भाव लेशा द्रव्य लेशा देखी थी, द्रव्य लेशा होगी, जो शरीर का वर्ण उनका होगा, हम देखते हैं ना कीर्तन करो उनके शरीर का वर्ण का ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि दो, ऐसे ना सुवर्ण बाकी सुनहरे है कोई ऐसी, ये आता है कभी दोहा आता है उसका, दो हरे हरे भी, हाँ हाँ दो सावले, दो गोरे दो सावले दो हरे, अच्छा हाँ हाँ, ये द्रव्य लेशा हुई, क्योंकि शरीर तो है, चौदहवें गुणस्थान वाले का शरीर है कि नहीं है, है बेटा है, चौदहवें गुणस्थान वाले अरिहंत भगवान को शरीर है कि शरीर रहित है, शरीर है बराबर, और सिद्धों को शरीर नहीं है, तो वहाँ ये द्रव्य लेशा भी होगी उनके। यानी कोई ऐसा कहेगा ना चौदहवें में लेशा होती है तो घबराना नहीं है ना, भाव लेशा बिल्कुल नहीं होती, द्रव्य लेशा हो सकती है, अपना दिमाग चलाना है। प्रत्येक लेशा के जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट, अभी कृष्ण जो लेशा है उसमें भी जघन्य यानी मंद वाले कृष्ण, बीच वाले, और उत्कृष्ट ने सबसे अधिक संकलेश वाले, ऐसे हर लेशा में होंगे। ऐसे भेद करने पर लेशा के कितने अंश हो जाएंगे, 6 × 3 = 18 भेद हो जाएंगे, तो ये लेशा के 18 अंश होते हैं। इनके अलावा यानी इन 18 को छोड़कर आयु बंध के योग्य 8 मध्यम अंश होते हैं, यानी इन 18 में तो आयु का बंध नहीं होता, आयु बंध के योग्य ऐसे जो लेशा के परिणाम होते हैं वो अलग ही होते हैं 8, तो ऐसे मध्यम टाइप के परिणाम होते, अति तीव्र संक्लेश परिणामों में और अति विशुद्ध परिणामों में आयु बनती नहीं। हमने ये भी देखा था कि सातवें गुणस्थान के बाद तो आयु ही नहीं बनती है, विशुद्ध परिणाम बढ़ रहे हैं ना बहुत, और ऐसे भी अभी मिथ्यात्व गुणस्थान में भी क्यों ना, वो अति तीव्र संक्लेश परिणाम में होगा तो आयु नहीं बनती, अति मंद उसके विशुद्ध परिणाम होंगे तो भी उस काल में आयु नहीं बनती। आपको शायद याद होगा प्रथमोक्षम सम्यक्तो का प्रकरण अभी हमने रत्नकरण शावकाचार में देखा था, तो प्रायोग्य लब्धि में हमने देखे थे वो बंधापचरण के कोई 34 ऐसे स्थान होते, किस किस का बंध रुक जाता है प्रायोग्य लब्धि से, अभी करण लब्धि में आने का बाकी है और उक्षम समय तो आगे चलकर होगा, वहाँ से ही अमुक इसके तो उसके ये नरकायु नहीं बनेगी, किड़ियंजायु नहीं बनेगी, ऐसे अलग अलग चारों प्रकार की आयु भी नहीं बनती है, प्रायोग्य लब्धि से लेकर अधिकरण लब्धि आगे और फिर उक्षम समय प्रथमोक्षम समय, तो प्रायोग्य लब्धि हमें वहाँ तत्व के विचार में जुड़ गया ना। हम तो क्या कहते हैं, दूसरे को मदद करना, उपवास करना, मंदिर में जाना, ये शुभ उपयोग है, परंतु यहाँ तो तत्व में ही वो जुड़ गया, तत्व के बारे में विचार कर रहा, और अब जाकर वो आत्मसन्मुख होकर वो विचार करता है, तो ये इसको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। तो प्रायोग्य लब्धि के काल में भी उसको आयु का चारों प्रकार के आयु का बंधन नहीं होता, बाद में सम्यक तो प्रकट करेगा उपशम के बाद बाहर, यानी सम्यक तो चलता रहेगा तब तो आयु बंध उसका चालू हो जाएगा, नरक तीर्यंश का आयु नहीं बांधेगा सम्यक दृष्टि जी, परंतु देवकी तो आयु बांधेगा, वो मनुष्य है ना, वो समय दर्शन के बाद अगर आयु बांधेगा तो देवकी ही बांधता है, मनुष्य है वो मनुष्य की भी नहीं बांधता। देव समय दृष्टि होगा, नारकी समय दृष्टि होगा तो मनुष्य की आयु बांधेगा, उसके लिए अलग अलग रूल्स है। तो उसका अभ्यास करने पर वो तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ उसमें डिफिकल्ट तो है ही, तो खाली समझ लो अभी तो जितना समझ सकते हो। तो ये जो लेशा के जो आठ मध्यम अंश है तभी आयु का बंद हो सकता है। लेशा के जो आठ मध्यम अंश है वे अपकर्ष काल में संभवते हैं। अब ये अपकर्ष काल है क्या, तो हमने देखा था कि आयु दो तिहाई बीत जाती है और एक तिहाई बाकी रहती है, यानी 2/3 बीत चुकी और 1/3 भी बाकी है। जैसे 81 ईयर की किसी की आयु हो तो उसमें से 54 साल बीत गए और 27 साल बाकी है, तो ये 27 साल बाकी है तो जो पहला एक अंतर्मुहूर्त का काल है वो कहलाता है अपकर्ष काल, और तभी ऐसे लेशा के मध्यम परिणाम रहते हैं जीव के, और उस काल में आयु का बंद हो सकता है। अब समझो उसका इन टाइम नहीं हुआ, कभी 27 बचे हैं, फिर 27 में से 2/3 निकल जाएंगे और 1/3 यानी कितने बचेंगे, 9 साल बचे, तो बचे हुए 9 साल का जो पहला अंतर्मुहूर्त है वो दूसरा अपकर्ष काल कहलाएगा, वो सेकंड चांस है जब आयु बंधेगी। तब बंधेगी या नहीं बंधेगी, फिर तीसरा अपकर्ष काल कब आएगा, अभी जो 9 बचे हैं उसमें से 3 साल बाकी रहेंगे तो 3 साल का पहला अंतर्मुहूर्त, फिर उसके बाद अगला वाला 1 साल बचेगा यानी 12 महीने, उसके अगला वाला 4 महीने बाकी, उसका अगला वाला 120 दिन है ना, फिर उसमें से भी ऐसे 1/3 बाकी रहेगा। अब ऐसे 8 चांसेस तो आएंगे, ये 8ों में ही बंद नहीं होगा किसी को, तो मरण के पूर्व एक अंतर्मूर्त इतने काल में आयु का बंद होता ही है, कोई बिना आयु का ऐसे लटकता नहीं बीच में कि क्या करे, सभी जगह ट्रैफिक जाम है हम कहाँ जाए, ऐसा नहीं होता, सारा बुकिंग पहले से हो जाता है, यहाँ से छोड़ने के पहले आगे की सारी तैयारी जीव कर लेता है। क्यों नहीं, तो हम गए कहीं घूमने को स्विट्जरलैंड को और वहाँ होटल बुकिंग नहीं मिले तो ऐसे कोई चिंता करने की कारण नहीं है, सारा आगामी बुकिंग जीव कर लेता है, ऐसे ऐसे परिणाम करता है, इसीलिए तो हर एक भाव में आगामी भाव की सारी बुकिंग कर लेता है, तो वो भाव नक्की हो गया, फिर उसमें और आगे का, फिर और आगे का, यानी फुर्सत ही नहीं ना उसको। हाँ, आयु कर्म तो उसी भाव तक ही रहेगा, एक एक भाव की एक एक हुआ आयु है, यानी विग्रह गति के पहले समय से शुरू होगा आयु का उदय और मरण के समय तक वो आयु का उदय, इमीडिएट नेक्स्ट समय में अन्य आयु, यानी उसके बीच में गैप नहीं होगा आयु कर्म के उदय में। हाँ, आगामी एक ही भव की आयु बनती है। हाँ, ये तो एक तो अवधि ज्ञान ही बता सकते हैं और केवल ज्ञान ही बता सकते हैं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या आता है, अनादि से अनंत काल की सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, अभी उनके अविभाग प्रतिक्षेप भी जाने वो तो बात सही है, परंतु वो हमारे पूर्व के सारे भव जानते होंगे कि नहीं, और भविष्य में अभी कितने बाकी है वो भी जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि किसी के 2 बाकी है, किसी के 4 बाकी है, किसी के और कितने बाकी है, वो तो सारे उनके ज्ञान, उसी तो दिव्य ज्ञान के थे, उस ज्ञान को अभी तो बीते ही नहीं, जीव ने भाव भी नहीं किए, कर्म बांधे भी नहीं है, जीव तो जब उस भाव में जाएगा तब उसके आगे वाले भाव के परिणाम करेगा। तो क्या लगता है कि सर्वज्ञ ने पहले जान लिया तो हम पराधीन हो गए, क्योंकि जैसा उन्होंने जाना वैसे हमको करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं, ज्ञान अपनी स्वयं की योग्यता से, उसी को तो दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान कहते हैं, कि ज्ञान में ही ऐसी विशिष्टता पात्रता है, सर्वज्ञत्व है ना उसमें, तो सारा कुछ पहले ही जान ले, भूतकाल का तो जानते ही जानते हैं, भविष्य काल का भी अभी जान ले वर्तमान में, ऐसी उनकी केवल ज्ञान की योग्यता है, ऐसी पात्रता है, और ऐसा स्वभाव हमारे पास है, सर्वज्ञत्व शक्ति है ना, 47 शक्ति में आपने याद किया था, ये सर्वज्ञत्व शक्ति हमारा स्वभाव भी सर्व जानने का है, यानी केवल ज्ञान, ये तो हमारा स्वभाव है। तो इस स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय में वो सर्वज्ञता प्रकट होगी, यानी पहले तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, और ये आगे बढ़कर उसी स्वभाव की दृष्टि करने से सर्वज्ञता भी प्रकट होगी। तो ये सर्वज्ञ भगवान सारे भव जान लेते जीव है, जीव तो परिणाम करेगा तब करेगा, वैसे ही वो ऐसा भी जानते हैं कि ये जीव कब केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, ये जीव कब समय ज्ञान प्राप्त करता है, ये समय हाँ हाँ। तो मारीचि के भव में 24वां तीर्थंकर होगा ये कहा था, और बीच में काल कितना गया, एक कोड़ा कोड़ी सागर जितना, एक कोड़ा कोड़ी यानी एक करोड़ सागर गुना एक करोड़, तो इतने एक करोड़ गुना एक करोड़ इतने सागर वर्ष, अभी उसमें 2000 सागर कितने होंगे, क्योंकि 2000 सागर इतनी स्थिति है, और हरेक जीव को 2000 सागर की पूरी स्थिति मिलती नहीं है भोगने को, तो वो कितने बार निगोद में गए होंगे, यानी बहुत तो अधिक मैक्सिमम काल तो निगोद में अन्य एक इंद्रियों में ही बिताया होगा, और फिर त्रस्त कभी कभी हुए होंगे। तो ये सारे उसमें से एक एक भव जाना होगा कि नहीं उन्होंने, और इतने सागरों के बाद उनके माता पिता कौन होंगे, तो माता पिता कौन होंगे, तो उनके भी सारे भव जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि वो कौन सा जीव उस सिद्धार्थ और त्रिशला के रूप में वहाँ मौजूद है, तो उस जीव के भी सारे जानेंगे कि नहीं है, उनकी शादी भी तभी होगी, उनके पेट में बालक भी हो तभी आएगा, और वो कहाँ से मर कर आएगा, ये सारा निश्चित है कि नहीं है। तो हमें क्या लगता है सर्वज्ञ ने जाना तो हम पराधीन हो गए, ये तो क्रमबद्ध पर्याय की बात यहाँ चली थी, तो तब हमने बहुत उसमें विस्तार से चर्चा की है। तो अभी हमारा जो विषय है, तो जो अपकर्ष काल, अपकर्ष यानी ये वन थर्ड बाकी रहता है, तब जीव के ऐसे मध्यम लेखा के परिणाम होते हैं, और तब आयु बंधने की उसकी योग्यता होती है। तो हरेक समय में किसी के आठों ही समय में आयु का बंध होगा, उसी आयु संबंधी उसको परिणाम परमाणु और ग्रहण करेगा, किसी का एक टाइम में ही वो सारा ही का सारा ग्रहण करेगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग नियम है। आगामी भव संबंधी आयु का बंध इस अपकर्ष काल में होता है, आयु बंध के योग्य परिणाम इस अपकर्ष काल में ही होते हैं, ऐसा सहज निसर्ग नियम है। अब ये हमारा अपकर्ष काल कब आएगा ये तो कोई बता नहीं सकता, और हरेक को क्या लगता है, चलो अभी मैं परिणाम ठीक रखूं तो मुझे अच्छा आयु का बंध होगा, ऐसे लगता है ना, यानी क्या चाहता है, वो आयु का बंध करना चाहता है, एक आयु अच्छी कोई मिले ऐसे जिसके मान्यता में है, और एक भव में अच्छा करूं तो उसकी मान्यता में अनंत भव पड़े हैं करने के, हर समय सभी कर्म बांध रहा है, तो ये आयु के बारे में जो क्यों इतना उतावला है, या वो क्यों उसको बदलना चाहता है, मैं अच्छे परिणाम करूं और कहीं स्वर्ग में ही जाऊं, नहीं कोई तो गति अच्छी है, कोई तो बंध अच्छा है ऐसा माना उसने, यानी कोई बंध अच्छा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बहुत अच्छा है, करने जैसा है, ऐसा जो मानता है ना, मान्यता में बात है, यानी उसके समय दृष्टि जीव को ऐसे सहज वो देर शुद्धि भावना वगैरह सारी हो जाती है, शाम को प्रकरण चल रहा है ना चौपाचार में, परंतु उसकी मान्यता में ऐसा नहीं है कि मैं ये बंध करूं, जिसकी मान्यता में बंध करने योग्य है वो तो बंध तत्व की भूल पड़ी है, वो तो अभी समय दृष्टि भी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। समय दृष्टि जीव को किसी भी कर्म प्रकृति के बंध में रुचि नहीं है, परंतु अभी वो शुद्धोपयोग में नहीं रह सकता है, तो ऐसे उसके शुभ उपयोग आते हैं उसका भी उसको स्वामित्व नहीं है, वो सोच सोच कर नहीं कहता, नहीं चलो अभी तो ये तीर्थंकर दिख रहे हैं, अभी चलो 16 कारण भावना भाता हूँ, चलो मेरा भी नंबर लग जाए, ऐसा नहीं होता, ये समय दृष्टि का स्वरूप नहीं है। दिवाली क्या लाता है, तो कोई भी कर्म बंध करने योग्य ऐसा वो मानता ही नहीं, ये मान्यता की बात है, अभी वो उसके परिणाम छूट नहीं है, अभी शुभ उसको हो रहा है, अभी कभी कुछ प्रकार के शुभ भाव होते हैं जीवों को समय दर्शन होने के बाद, मिथ्या तो अवस्था में जितने शुभ भाव थे उससे समय तो होने के बाद उसके शुभ भाव तो अभी और ऊपर बढ़ रहे, यानी शुभ के कारण होने वाला बंध तो उसको बढ़ रहा है अभी, फिर भी वो करने लायक नहीं मानता, होने वाले भावों को वो सहज ज्ञाता रूप से जानता रहता है, ख्याला है ना। और मिथ्या दृष्टि जीव, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये राग अच्छा है, ऐसा उसने राग में एकत्व बुद्धि होने के कारण विशिष्ट राग करने लायक है, ये बंद हो तो अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ऐसा उसमें कहीं ना कहीं अभिप्राय में भूल पड़ी रहती है। आयु बंध इन 8 अंशों के समय होता है, चौथी लाइन। परंतु मरण के समय अन्य कोई भी लेशा हो सकती है। देखो मरण की लेशा अलग, जीव जिस गति में जाने वाला है वैसे वो मरण के समय भी उसकी लेशा होती है। अभी जैसे साइड समय दृष्टि श्रेणी राजा अब नरक में जाने वाले हैं, तो मरण के समय लेशा कौन सी, आयु बंध किया तभी तो लेशा अलग हुई, कोई वहाँ तो आयु बंध तो उन्होंने नरक का किया था, वहाँ भी अशुभ लेशा में आयु बंध किया था, उसमें भी मध्यम परिणाम जो कोई होगे। परंतु जब मरण का समय आया, नरक में जाने वाले हैं ना, तो वैसे अशुभ लेशा में जाकर मरण हुआ। अब स्वर्ग में जाने वाले जीव शुभ लेशा में मरण होता है, तो कौन कहाँ पैदा होता है, वैसे उसको मरण के समय उसकी लेशा भी वैसी सहज रूप से होती है, उसको करनी पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये क्या क्या होता है उसका यहाँ वर्णन करते हैं। हम ये सुनकर क्या कहते हैं, कुछ पलटना चाहते हैं, नहीं हमारे परिणाम सुधरो, ठीक है उपदेश की भाषा में तो ऐसे ही होगा कि चलो स्वाध्याय करो, परिणाम को संभाल रखो, ये अपने परिणाम कहीं जाते नहीं, ना हम दूसरे के ऊपर अन्याय करते नहीं, इसकी संभाल रखो, बराबर केयरफुली बिहेव करो, ऐसे बताते हैं ना, वो तो उपदेश की भाषा है। परंतु ये तो परिणाम ऐसे होते हैं, कैसे जीवों के कैसे होते हैं, सारा वर्णन यहाँ आता है। किस रेखा के साथ मरने वाला जीव कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ जन्म लेता है, इस संबंधी विवक्षित नियम है। थोड़े से अध्ययन के बाद कौन सी जीवों की कौन सी रेखा होती है और कौन सी रेखा में मरण होने पर जीव कहाँ जन्म लेता है आदि बातें हमारी समझ में आती है। अध्ययन और अभ्यास से कोई भी बात आसान हो जाती है ना। और ये पढ़कर ऐसी रुचि भी होती है ना कि चलो मैं इसके बारे में, आयु बंध के बारे में और जानूं, रेखा के बारे में, तो पुस्तकें तो है ना, अपने ग्रंथ तो है, समय ज्ञान चंद्रिका जो गोमटसार है, तो उसको पढ़ने की रुचि भी जागृत हो जाती है। तो इससे तो इतनी रुचि जागृत हो और बेसिक अभ्यास हमारा हो, इतना ही उसका उद्देश्य है। बहुत कई भी तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ये बिल्कुल सरल सीधी बातें। ऐसा भी आता है लेशा में, ये जो एक इंद्रियादी जीव है ना, तो उसमें तो 3 अशुभ लेशा ही होते हैं। पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं हमें, तो उसमें कृष्ण नील कपोत, ये 3 लेशाएं पाए जाते हैं। सारे सूक्ष्म जीव उनमें भी ये अशुभ लेशा ही पाए जाते हैं। अब भव्य मार्गणा, 10 मार्गणाएं हो गई। देखो 4 दिन पहले तो मार्गणा क्या पता नहीं था, तो आप अभी तो कितने, ये तो कहाँ से आया ज्ञान, पुस्तक में से आया। हाँ बेटा वैशाली, कहाँ से आया ज्ञान, ज्ञान में से आया, अपना ज्ञान गुण है ना, तो उसमें हर समय कौन सी पर्याय होगी, ऐसा पर्याय का धर्म अंदर पड़ा है प्रत्येक द्रव्य में। अपने सारी अनादि अनंत पर्याय ये अपने द्रव्य में से वो पर्याय उत्पन्न होती है। जब जब वैसा काल है तब तक उसमें तो उपादान कारण है ही है, उसके साथ वह निमित्त भी वैसा बनता है, सामने पुस्तक भी होती है, कोई समझाने वाला भी मिलता है, ये सारा अपने आप हो जाता है। परंतु मूल बात जो उपादान है, अपना स्वभाव है, वो हमारे ख्याल में आना चाहिए, ये अंदर से आता है, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। और फिर जब कथन आता है तो सामने वाले युग हम कहें हाँ आपने समझा इसलिए हमें समझ में आए, उसको ऐसा नहीं बताते है, नहीं हमारे ज्ञान मन में से आया है, आपने कुछ नहीं किया, ये तो कहने की बात अलग होती है। ऐसे ही उपचार होता है लौकिक। देखो अब भव्य मार्गणा देखेंगे, इस संसारी जीवों के भव्य और अभव्य दो भेद पाए जाते हैं। किसके, संसारी जीवों के। भव्य शब्द का अर्थ है होने योग्य, भव्य हम कहते हैं कर्तव्य यानी करने योग्य, यो लगाते हैं ना, जैसे पूज्य यानी पूजने योग्य, वैसे यहाँ भव्य, भव यानी भवना, भवती यानी वो होना यानी होने योग्य। अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप की प्राप्ति होने की जिनमें शक्ति है, अनंत चतुष्टय रूप यानी अभी क्या, केवल ज्ञान आदि वो जो अनंत चतुष्टय, अनंत कौन कौन से अनंत चतुष्टय, वेरी गुड। तो ऐसे रूप होने की जिसमें योग्यता है, शक्ति है, उसको भव्य कहते हैं। अर्थात भव्य जीव रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, कौन से रत्नत्रय, हाँ तीन रत्न है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाते हैं। तो रत्नत्रय ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करके मुक्त हो सकते हैं। होते हैं लिखा गया, हो सकते, शक्ति बताई ना, वैसी उनमें योग्यता पाई जाती है। जिन जीवों में ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता ही नहीं होती, उन्हें अभव्य कहते हैं। उन्हें वैसी शक्ति है ही नहीं, किसी कर्म के कारण ये है नहीं, वो अपने आप सहज रूप से ही ऐसी, किसी में शक्ति है और किसी में नहीं है। भव्य जीव भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। कोई भव्य जीव ऐसे है कि मुक्त होने की योग्यता होने पर भी, देखो ये बात यहाँ है, वे कभी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करते और मुक्त नहीं होते, यानी अनंत काल तक है तो भव्य, परंतु वे कभी भी मोक्ष मार्ग प्रकट करेंगे नहीं, यानी अनंत काल के बाद सभी भव्य सिद्धालय में जा चुके और यहाँ अकेले अभव्य ही रह गए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। हमेशा संसार में अभव्यों से भव्य जीव अनंत गुणे रहेंगे ही। कल देखा था ना सिद्ध राशि, इसमें अनंत काल के बाद भी जितनी सिद्ध राशि होगी उससे अनंत के अनंत गुणा जीव एक निगोध शरीर में, जो निगोध से अभी बाहर नहीं निकले हैं, उसमें भी कितने ही तो भव्य ही है। तो ऐसे सिद्ध हो ना कि कोई जीव वो है तो भव्य, परंतु कोई नीचे निगोध में रहेंगे तो अनंत काल के बाद भी अभी नीचे निगोध में ही पड़े है कौन, भव्य। कोई ऐसे भी है कि वो त्रस पर्याय भी पाते फिर इतर निगोध में चले जाते हैं, फिर त्रस और ऐसा परिवर्तन उनका चलता रहता है। कल हमने देखे थे ना पांच परावर्तन रूप उनका चलता रहता है, अन्य अन्य भवों में घूमते रहते हैं, फिर भी वो कभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करे, ऐसे भी कोई भव्य जीव है। वे अनंतानंत काल संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। अन्य जो भव्य है वे कालांतर से मुक्त होंगे। अभी तक जो जीव मुक्त हो चुके वो भव्य थे कि अभव्य, हाँ बोलो, हाँ क्या है, भव्य, क्योंकि भव्य जीव ही रत्नत्रय प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। अभी उनको भव्य नहीं कहेंगे, वो बात आगे आएगी। मुक्त होने के पश्चात, ये आई देखो बात, मुक्त होने के पश्चात इन जीवों को भव्य नहीं कहते, वे अभव्य भी तो है नहीं। भव्य क्यों नहीं कहते, अभी भव्य का अर्थ क्या कहे हमने, होने योग्य, अभी वे कैसे हो चुके, बराबर। अभी कोई मेडिकल कॉलेज में बढ़ रहा है एडमिशन ली, वो क्या है, डॉक्टर बनने योग्य है, और डॉक्टर बनने के बाद हम क्या कहेंगे उसको, डॉक्टर ही कहेंगे, डॉक्टर होने योग्य नहीं कहेंगे। वैसे सिद्ध जो है होने योग्य, जब तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हुई तब तक उनको हम होने योग्य कहेंगे। सिद्धावस्था प्राप्त होने के बाद वो तो भव्य, तो उनका गुण प्रकट हो गया, अब उनको भव्य नहीं कहेंगे। खलाया ये डिफरेंस, देखो भव्य से शक्ति की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होना यानी प्रकट होना, अभिव्यक्ति होने के कारण भव्य अभव्य के पार ऐसे ये मुक्त जीव है। इनमें जीवत्व पारिणामिक शक्ति होती है। पारिणामिक शक्ति तीन प्रकार की देखी थी परसों यहाँ शाम की क्लास में, बोलिए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ये भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव का, क्यों, क्योंकि उसमें किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, वो सहज जीव का ऐसा ही स्वभाव है, इसलिए उसने पारिणामिक भाव में लिया है। तुम सोचोगी ऐसा भव्य अभव्य विभागन क्यों भला किया है, ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा लगता है पार्शलिटी हो गई, कोई जीव भव्य और कोई अभव्य है, तो ये विभाजन ये किसी ने किए तो है नहीं, जीव की यह सहज योग्यता है। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव है, किसी भी कर्म की किसी भी अवस्था के कारण यह तय नहीं होता। यानी कर्म का उदय है, उपशम है, क्षय है या कोई भी क्षयोपशम है, ऐसा कोई भी कर्म की अवस्था उसमें कारणभूत नहीं होती। मैं अभव्य तो नहीं हूँ ना, ये कोहरे के मन में प्रश्न उठता है। इस तरह का विचार करके गलित गात्र होने की यानी घबराने की, गर्भगलित कहते ना मराठी में, उसकी आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति ही इस तरह के निराशाजनक विचार, निगेटिव थिंकिंग करते हैं। हम बच्चे को कुछ बात कहेंगे स्कूल में, ऐसे ऐसे कहना टीचर को या सर को, तो पहले रोने लगता है, टीचर मुझे मारेंगे तो, कहते ना रोते हुए जाएगा तो मरण की खबर आएगी, ऐसे मराठी में क्या होता है। हाँ मराठी में ऐसी है, क्या होता है मराठी में भी, हिंदी में भी है। तो कहते अरे पहले से क्यों रोता है, मैं अभव्य हूँ तो ऐसे क्यों रोने की क्या जरूरत है। ऐसे किसको विचार आते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। तो पुरुषार्थ वाला हाँ वो अधीन नहीं है, परंतु जिसको भी शास्त्र की आत्मा की रुचि है, रुचि पूर्वक जो सुनता है तो वो भव्य ही है। मैं अभव्य हूँ ऐसे निगेटिव थिंकिंग क्यों करते हो, ऐसा कहते। पद्मन ने वो तो स्वामी जी तो ऐसा करते ठीक है, अरे वो कोई चतुर्थ गुण स्थान से गिरे भी तो अरे गिरने की बात यहाँ नहीं चली, ऐसा कहते। यानी जो पुरुषार्थी जीव है उसके गिरने गिरने की उसके विचार भी नहीं आते, क्योंकि तत्व की रुचि वाला जीव है और तत्व बिल्कुल जिसको बैठा है वो क्यों गिरेगा। जिसके भी तत्व में कचास है वो उसको कभी शुद्धोपयोग होता है कभी गिर जाता है, वो उसकी बात नहीं करना यहाँ, ऐसा कह देते हैं। जैसे कोई व्यापार करने निकला तो पहले कहेगा वो अरे मेरा दिवाला निकला तो तो हम कहते ना कि ये ऐसा ऐसे थोड़ी सोचते जो व्यापार करने वाला है वो स्कूल में एडमिशन ली मैं फेल हूँ तो अरे फेल तो कभी कभार एक आध बच्चा होता है। तो ये ऐसी बात है पुरुषार्थ वाला व्यक्ति नहीं करता, इसे कहते निगेटिव थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मनंद आचार्य ने लिखा है कि आत्मा की चर्चा भी जो अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुनता है वह निश्चित ही भव्य है और निकट भविष्य में मुक्ति का पात्र है। उन्होंने लिखा है, वो संस्कृत पढ़ रही हूँ, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति यानी आत्मा के प्रति, प्रीति चित्तेन यानी रुचि पूर्वक, येन वार्ता श्रुता, जिसकी वार्ता भी जिसकी बातें भी यानी आत्मा की बातें भी जो रुचि पूर्वक सुनता है, श्रुता यानी श्रुत, हमने श्रुत यानी सुनना, जो सुनता है निश्चितं स भवेत भव्यो, वो निश्चितपने भव्य है, भावी निर्वाण भाजनम, और भविष्य काल में निर्वाण का भाजन यानी निर्वाण का पात्र है, मुक्त होने के पात्रता उसमें है। अब पहले गुणस्थान में भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव होते हैं। अब दूसरे गुणस्थान में कौन से जीव होंगे सिद्धार्थ, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि दूसरे में जो जीव है वो नियम से सम्यक्त्व प्राप्त करके गिरकर आया है और वहाँ से वो मिथ्यात्व में जाने वाला है, फिर भी उसने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त किया है उसका अर्थ वो भव्य ही है। और भव्य है भले वो मिथ्यात्व में कितने ही ज्यादा लंबे में लंबे घूमे, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के ऊपर तो घूमेगा नहीं, नियम से फिर ऊपर करके अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर ही अंदर मोक्ष चला जाएगा, ख्याल आता है। तो पहले गुणस्थान में कौन से जीव है, भव्य अभव्य दोनों है, क्योंकि पहले में से समय को प्राप्त करके वो ऊपर जाने वाले, और दूसरे से चौदह गुणस्थान तक के जीव नियम से भव्य ही होते हैं। ये अरिंद्र भगवान को भी अभी भव्य कहा है क्योंकि अभी सिद्ध होने योग्य है ना, तो भव्य है वो, सिद्ध होने के बाद उनको भव्य नहीं कहते। अब सम्यक तो मार्गण, यहाँ मात्र सम्यक्त्व की चर्चा नहीं है अपितु सम्यक्त्व मार्गणा की चर्चा। जैसे हमने संयम में देखा था, संयम की अपेक्षा से जीवों के भेद किए थे, अब यहाँ क्या करेंगे, सम्यक की अपेक्षा से जीवों के भेद करेंगे। पहले से 14 गुण स्थान तक के जीव जो है ना सारे, उन सारे ही जीवों को हम सम्यक की अपेक्षा डिवाइड करेंगे। तो पहले में पहले कैसे करेंगे कि सम्यक सहित वाले और सम्यक रहित वाले, तो मुझे बताओ सम्यक से रहित ऐसे कौन कौन से गुण स्थान वाले जीव है? पहले, दूसरे और तीसरे। पहले का नाम क्या है? मिथ्यात्व। दूसरे का सासाधन और तीसरे का मिश्र। और सम्यक सहित वाले जीव है तो उनमें सम्यक के कोई भेद जानते हो आप? हाँ दीपाली। हाँ और सायोक्षमिक सम्यक, वेरी गुड। सम्यक के तीन प्रकार, अब ये सारे यहाँ चर्चा होगी उसकी। तो जब हम सम्यक मार्गना करेंगे तो सम्यक मार्गना से ऐसे 6 भेद होंगे। कौन से? पहला गुणस्थान वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, और जो सम्यक सहित है उसमें औपचमिक सम्यक्त्व वाले, सौक्षमिक सम्यक्त्व वाले और सायिक सम्यक्त्व वाले। तो यही बात है। तो सम्यक मार्गना कहेंगे तो 6 से 6 भेद गिनाना पड़ेगा। अकेला सम्यक नहीं कहा, सम्यक के कितने भेद होते कहेंगे तो 3 होंगे। परंतु सम्यक मार्गना की अपेक्षा जीवों के भेद कितने होते हैं? 6 भेद। चलाया यही प्रिंसिपल हर जगह लगाना है। जैसे हमने संयम में देखा था, सम्यक की अपेक्षा सेकंड लाइन जीवों का विभाजन है। यहाँ जीवों के मुख्य 2 भेद होंगे, सम्यक्त्व रहित जीव और सम्यक्त्व सहित जीव। सम्यक्त्व रहित जीवों में मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व वाले जीव, ऐसे 3 भेद होते हैं। अभी हमने देखा था ना, सम्यक्त्व की अपेक्षा कोई मिथ्यात्व है, कोई सासाधन वाले हैं और कोई मिश्र वाले हैं। और सम्यक्त्व सहित जीवों में औपचमिक सम्यक्त्व वाले, सौक्षमिक सम्यक्त्व वाले और क्षायिक सम्यक्त्व वाले जीव, ऐसे 3 भेद हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गना में जीवों के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद क्या है? कौन रिपीट कर सकता है? सिद्धार्थ बोलो आप। सम्यक्त्व मार्गना की अपेक्षा से 6 ग्रुप हो गए जीवों के। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे यानी औपचमिक वाले, औपचमिक समित्व वाले, साइक्स वाले और सौक्षम वाले, ऐसे 6 भेद होते हैं। इनमें इनमें से पहले 3 भेद अनुक्रम से पहले 3 गुणस्थानों में होते हैं। कभी हमने देखा ही था, प्रथमोक्षम समित्वी जीव 4 से 7 गुणस्थान तक होते हैं, सारोक्षमिक प्रथमोक्षम कहाँ से कहाँ तक होता है? हाँ, प्रथमोक्षम किसे कहते हैं मालूम है? हाँ शिक्षा जी मालूम है, पाटनी जी। प्रथम ऑप्शन सम्यक तो किसे कहते हैं और द्वितीय ऑप्शन किसे कहते हैं? हाँ और कोई कहेगा? हाँ मंदाबेन, क्या देखो ये सुन, किसमें से हो? नहीं नहीं, परंतु वो कौन सी अवस्था वाला ऑप्शन में आता है? हाँ देखो सुनो, अभी ऐसा कहना कि सबसे प्रथम होता है वो प्रथम उपशम, वो गलत है। नहीं, उसका अर्थ ऐसे जो जो जब जब मिथ्यात्वों में से उपशम करके ऐसे कह सकते कि मिथ्यात्वों में से जब जब वो समय को प्राप्त करेगा तब उसको प्रथम उपशम समय को कहेंगे। और उसमें भी एक बात कहनी आवश्यक है कि मिथ्यात्वों में से कोई जब कर्मों का उपशम करके समय को प्राप्त करे, अनादि जो है मिथ्या दृष्टि वो तो उपशम सही थी पहले टाइम प्रथम उपशम समय को करेगा, कोई ऐसा है कि फिर गिर गया मिथ्या तो में चला गया, अभी उसके पास तो तीन टुकड़े मौजूद है वो दोबारा भी समय को प्राप्त करेगा तो उसका उपशम करके प्राप्त करेगा तो उसको भी प्रथमोपशम ही कहेंगे। ख्याल में आता है ना, तो जब जब मिथ्या तो में से समय को प्राप्त करेगा तो मिथ्या तो में से डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकता है, पहले गुण स्थान से चौथे में, पांचवे में और सातवे में, तो ये सारे औपशमिक करने को। अभी सातवें से छठे में आता है तो भी उसका वो प्रथम ऑप्शन चालू रहता है, इसलिए छठवे को भी यहाँ लिया, चौथे से सातवें गुणस्थान तक प्रथम ऑप्शन करने को होता है। अब तो उसका उपशम चालू है ना, उपशम काल चालू है उसका औपशमिक, अभी मिथ्यात्व का उपशम हुआ है, पहले से सातवें में गया, सातवें में से छठे में आया, उसका उपशम समय तो बना रहता है, उपशम का काल चालू है और छठे सातवा बहुत से बार हो जाता उतने ही काल में। द्वितीय उपशम यानी जो प्रथम उपशम समय के बाद वो जीव नियम से क्षोभन समय दृष्टि होगा, तो क्षोभन समय दर्शन उसका चालू, जब वो उपशम के लिए मांगने के सम्मुख हुआ तब क्षोभम में से दोबारा वो उपशम करता है। हाँ उसको कहते हैं, हाँ ये दोबारा यानी क्षोभन में से, क्योंकि क्षोभन का अर्थ क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय चल जाएगा, सम्यक प्रकृति के उदय से ही श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं होता, इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती, हाँ उसमें दोष है, इसलिए वो क्या करता है, करता है वो सहज हो जाते हैं, उसको करता भी तय समझ सोच समझ कर नहीं करता कुछ, सोच समझ कर करना ही तो शायद ही मान लेना, तो इसे सहज उसके परिणाम होते हैं कि जो उसने समय प्रकृति का उदय है शोक समय उसको भी उपशमित कर देता है और द्वितीय उपशम समय तो होता है, तो उपशम श्रेणी के चढ़ने के पहले सोक्षम सम्यक दृष्टि जो सोक्षम में से उपशम करता है वो हो गया द्वितीय उपशम सम्यक। अब जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो उपशम श्रेणी मानने के पहले क्या करेगा, ऐसी बात नहीं है, वो द्वितीय उपशम करेगा कि नहीं करेगा, पाटनी जी हाँ दर्शन मोने तो है नहीं, उसके सही किया है ना, हाँ तो उसको उपशम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका तो समय तो है ही, वहाँ साइक समय दृष्टि है, निर्मल से निर्मल है वो, तो उसके साथ भी वो उपशम करनी चल सकता है, उसको कर ही नहीं सकता वो करना चाहे तो उपशम। प्रश्न में मैंने जानबूझ के पूछा कि कोई मिसलीड हुए इसलिए हाँ उपशम श्रेणी चढ़ गया, उपशम श्रेणी है ना क्या, चारित्र की उपशम ना करते हुए चढ़ता है, उसके पास तो शायद सम्यक तो है, देखो जो हमने द्वितीय उपशम कहा था, द्वितीय उपशम वाला क्या कहता है, सम्यक्त्व को उसने द्वितीय उपशम किया और श्रेणी चढ़ा तब चारित्र को भी उपशमित किया, समझ में आता है ना, हिंदू धर्म को देखो क्षायिक जो है किसका क्षय किया है, उसने दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का क्षय किया, अब जिसका क्षय किया है जो सत्ता में ही नहीं है उसको उपशम करने का सवाल ही नहीं आता, विपरीत धर्म में वो चारित्र का उपशम करते हुए चढ़ता। अभी उसका उपशम श्रेणी यानी किसका उपशम करता है, वो चारित्र प्रकृति के। सम्यक प्रकृति तो उसके है नहीं है, उसने क्षय किया सारा। देखो उपशम किस किस का होता है, यानी औपशमिक सम्यत्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक भाव दो है ना, यानी दर्शन मोहनीय का भी उपशम हो सकता है और वहाँ चारित्र मोहनीय का भी उपशम होता है। तो उसके पास तो दर्शन मोहनीय तो है ही नहीं क्षय वाले के पास, फिर भी चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए वो ग्यारहवें गुण स्थान तक जाकर फिर वापस आएगा शरीर तक, और फिर दोबारा शपथ श्रेणी भी चलेगा। ये आयु बांधी हो तो चले जाएगा देवों में। शाही समय जैसे द्वितीय उपशम करता ही नहीं है, द्वितीय उपशम कौन करेगा, शोक्षम वाला ही करेगा। शाही वाले के पास वो कर्म अभी सत्ता में ही नहीं है, तो उसको द्वितीय उपशम करने का सवाल ही नहीं है। तो ये बात आपके बराबर ख्याल में है कि नहीं है, ये देखने के लिए मैंने प्रश्न पूछा था कि शाही वाला द्वितीय उपशम करेगा कि नहीं करेगा। ख्याल आया? तो द्वितीय उपशम तो शोक्षम वाला ही करेगा, साइक वाले का तो क्या करने की जरूरत, उसके पास तो सत्ता में है ही नहीं है वो कर्म, उसने तो क्षय की कर दिया है। साइक समिति जी चौथे से चौदहवें गुण स्थान तक होते, चौक समिति कहाँ से कहाँ तक होते हैं, चौथे से सातवें तक, और शायद जीव शायद सम्यक जीव चौथे से चौदह, और सिद्ध भगवान कौन से है, शायद समय दृष्टि ही है, सिद्ध भगवान भी शायद समय दृष्टि है। अब द्वितीय उपशम सम्यक्ति को यहाँ अलग लिया, चौथे से सातवें तक प्रथम उपशम वाले को दिया था, अब द्वितीय उपशम कब करता है, वो सातवें में करता है और फिर श्रेणी करता है, ग्यारहवें तक जाकर फिर वापस उतर के आता है, उसका उपशम काल बहुत बड़ा है। उसी उपशम काल में ये सारा होता है, ग्यारहवा दसवा नौवा आठवा सातवा छठा, छठे से कोई पांचवे में आए कोई चौथे में भी आए आ सके, तो वहाँ तक उसका सम्यक तो बना रहेगा। तो ये कौन सा सम्यक होगा, उसका द्वितीय उपशम सम्यक। देखो यहाँ क्या लिखा है, द्वितीय उपशम सम्यक जीव चौथे से ग्यारहवें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व चौथे में प्राप्त नहीं करता, परंतु द्वितीय उपशम सम्यक्त्व सहित वो श्रेणी चढ़कर उतर कर आया, उतरते उतरते चौथे तक आया। इसलिए यहाँ लिखा है कि द्वितीय उपशम वाला जीव चौथे से ग्यारहवें तक पाया जाता है, छठे तक क्रम से आता है, बाद में अक्रम से कहीं भी जाएगा वो। हाँ क्षोक्षम हो जाएगा, अंतर्मूर्त है, हाँ क्षोक्षम हो जाएगा, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़कर ग्यारहवें में से वापस लौटकर क्रम से छठवे तक आकर वहाँ से नीचे चौथे तक आ सकते हैं ना, इसलिए पॉसिबिलिटी लिखती। अब संगी मार्गना, ये सम्यक्त्व मार्गना ख्याल में आए तो हर के तीन प्रकार के, तो बिना सम्यक्त्व के जो पहले दूसरे और तीसरे गुण स्थान के, और जो सम्यक्त्वी है वो उपशम वाले यानी औपशमिक समय जिसके, उसमें भी दो प्रकार है, उसको मार्गना में हमने खाली छह प्रकार ही गिने, औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षय। जो क्षयोपशमिक है उसका दूसरा नाम मालूम है किसी को, वेदक समय दृष्टि। तो जब वेदक समय दृष्टि ऐसी बात आएगी शास्त्र में तो वहाँ जान लेना की वो क्षयोपशमिक की बात चल रही है। वेदक यानी वो वेद रहा है किसको, सम्यक प्रकृति का, इसलिए उसको वेदक सम्यदृष्टि कहते। अब संगी मार्गना, संगी पहले हमने कौन सी देखी थी, प्ररूपणा संज्ञा, और यहाँ क्या नाम है, संगी। तो ये दो में बराबर ध्यान रखना, संगी के बदले संज्ञा नहीं हो जाए, ये गुणस्थान प्रवेशिका में था, ये संज्ञा लिखा था। इवन और भी किसी पुस्तक में है इसी कुछ बातें। तो देखो संगी मार्गना के बारे में चर्चा करते समय प्रथम संगी कहते किसे है उसकी चर्चा करें। मन द्वारा जानने वाले जीव यानी मन ज्ञान सहित संगी पंचेंद्रिय जीव संगी है, यानी जिनको मन है, मन के द्वारा जानने की जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का उघाड़ है, उसको संगी जीव कहते हैं। मन द्वारा जानने की उघाड़ रूप शक्ति जिनके नहीं पाई जाती, ऐसे मन ज्ञान रहित जीव असंगी है, यानी मन के द्वारा ज्ञान उनको नहीं होता है क्योंकि मन ही नहीं उनके पास। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीव असंगी है। इस मार्गना का तीसरा भेद है संगी और असंगी पना से रहित तेरहवे और चौदहवे गुणस्थान वर्ती अरियन। देखो इसमें क्या बताया हमें, हमने कसाय में कैसे देखा था, कसाय सहित और कसाय रहित, बराबर समय को यानी समय को सहित और रहित। अब ये संगी में क्या है, संगी और असंगी ऐसे दो भेद हमारी ख्याल में आते हैं, तो हमें क्या लगेगा कि चलो ये सारे ही पहले से ये जो एक से असंगी पंचेंद्रिय तो सारे असंगी ही है। असंगी पंचेंद्रिय कहाँ कहाँ है, तीरंश में भी है, मनुष्य देव और नारकी है। तो अरिहंत भगवान कैसे है, तो ये उससे पार है क्योंकि वहाँ अभी उनके भाव मन नहीं है ना, यानी मन द्वारा जानते नहीं है, इसलिए वो संगी से भी पार हो गए, असंगी तो उनको कहेंगे नहीं। तो क्या कहते हैं कि इसका तीसरा भेद है संगी असंगी पना से रहित तेरहवे और चौदहवे गुणस्थान मती अरिहंत है। अरिहंत भगवान के द्रव्य मन तो होता है परंतु सूक्ष्म ज्ञान रूप भाव मन उनके नहीं होता, अर्थात उनका जानना मन द्वारा नहीं होता क्योंकि उनके तो क्षणिक ज्ञान केवल यंग प्रकट है। जब हमने प्राण प्ररूपना देखी थी उसमें भी अरिहंत भगवान को वो पांच इंद्रिय प्राण नहीं ऐसा देखा और मन बल विवान नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि उनका जो जान्य रूप कार्य है, जान्य रूप व्यापार है, वो इंद्रिय या मन द्वारा नहीं होता। वैसे यहाँ लेना वो संगी, संगी कब कहेंगे, मन द्वारा जानेंगे उसको संगी कहेंगे, इसलिए अरिहंत भगवान संगी पना से पार हो गए, इसलिए भी संगी मार्गना की अपेक्षा भेद कितने हुए, तीन, एक असंगी संगी और ये अरिहंत, जो संगी असंगी पना से रहित है। पहले हमने संज्ञा नाम की प्ररूपना देखी थी और अब देख रहे हो संगी मार्गना है। नाम सदृशता के कारण तुम कुछ घोटाला न कर बैठे, सिमिलैरिटी इन नेम, यानी नाम में ऐसा लगता है ना अरे संज्ञा क्या और संगी क्या, वो सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इसलिए यह बात तुम्हारे निदर्शन में ला रही हूँ। जीव समाज में जब हमने संगी असंगी कहा था, जीव समाज में भी देखा था ना, क्या देखा था, पंचेंद्रिय के दो भेद किए थे संज्ञ और असंगी और उसमें फिर पर्याप्त अपर्याप्त, तो वहाँ जब हमने संज्ञ असंगी कहा था वहाँ मन सहित और मन रहित ऐसा सीधा अर्थ किया था। वहाँ तो अरिहंत जीव भी जीव समाज की अपेक्षा संगी कहलाते। देखो जीव समाज में अगर हम अरिहंतों की चर्चा करेंगे तो वो संगी आएंगे क्योंकि वो कौन से जीव थे ऐसा लेना ना। हाँ तो यहाँ क्या है, कौन सी मार्गना है, संगी मार्गना की अपेक्षा वो संगी असंगी से पार ऐसे है, ये स्पेशलिटी यहाँ। संगी अर्थात मन सहित जीवों का लक्षण हमने पहले देखा था, यानी वहाँ मन है कि नहीं इतना ही हमने देखा था और यहाँ मन के द्वारा जानते हैं कि नहीं, ये स्पेशलिटी है। संगी अर्थात मन सहित जीवों का लक्षण हमने पहले देखा था, मन द्वारा हित अहित के ग्रहण त्याग रूप शिक्षा, यानी अपना हित किसमें है अहित किसमें है ये जानना, इच्छानुरूप हाथ पैर आदि की क्रिया, उपदेश का ग्रहण, स्मरण, याद आदि करने वाले जीव कौन कौन से, मनुष्य, हाथी, घोड़े, कुत्ते, कई पंछी और प्राणी और देवनार की सभी संगी जीव है, शेष एकेंद्रिय से असन्नी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवन से असन्नी है। क्या नया अभी आखिरी आहार मार्गना चौधरी आहार यानी जो भोजन करते वो आहार वाले और जो बिना भोजन उपवास करते वो अनाहार वाले होंगे। क्यों अभी विचार करते यहाँ क्या बता रहे क्यों देखो अब अंतिम आहार मार्गना देखते हैं। जीव जो शरीर रूप वचन रूप और द्रव्यमन रूप होने योग्य नौ कर्म वर्गना का ग्रहण करता है उसे आहार कहते हैं। अभी हमने देखा था नौ कर्म वर्गना जीव ग्रहण कितनी वर्गना करता है मालूम है। हाँ देखो पुद्गल की तो 23 वर्गना याद है। इन 23 वर्गना में से जीव के साथ संबंध वाली पांच ही वर्गना है। कौन कौन सी ऐसे पांच वर्गना के साथ ही जीव का संबंध है उन्हीं को जीव ग्रहण करता है। तो कर्म तो हमने कर्मा कालमान वर्गना ग्रहण करके उसका कर्म बन जाता है और जो अन्य चार वर्गना है आहार वर्गना तेजस वर्गना भाषा वर्गना और मनोवर्गना इन चारों को मिलाकर नौ कर्म वर्गना कहते हैं। तो इन नौ कर्म वर्गना का ग्रहण करना उसका नाम है आहार। आहार किसको कहते हैं कि हाथ से मुख में ऐसा वो भोजन करना कवल लेना उसको आहार नहीं कहा यहाँ वो वहाँ भी आहार करेंगे कहेंगे हम पर यहाँ नहीं मुनियों को आहार दान करना चाहिए वो आहार वहाँ या हम अभी आहार का समय हो गया यानी भोजन का समय हो गया वो आहार अलग आहार के भी अलग अलग नाम आएंगे अलग अलग प्रकार का आहार होता है वो बात शायद यहाँ होगी। छह प्रकार का आहार देखो पहले तो ये देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। आहार किसे कहेंगे नौ कर्म वर्गना के ग्रहण को। हमने पहले छह प्रकार के आहार की चर्चा की थी अभी इसी पुस्तक में पहले वो विग्रह गति में वगैरह वो प्रकरण आया था वहाँ ये आहार की चर्चा है जब वो प्रकरण लेंगे तो उसकी बात करेंगे। छह प्रकार के आहार की आहार नाम की संज्ञा भी तुम्हें याद होगी। संज्ञा के नाम मालूम है याद है हाँ सिद्धार्थ अभी यहाँ तो एक बता दी आहार नाम की एक संज्ञा हुई दूसरी करी गई ये चार संज्ञा है। तो आहार नाम की संज्ञा हुई और ये आहार नाम की मार्गना जो है यहाँ आहार का अर्थ अलग है वहाँ आहार नाम की संज्ञा थी वहाँ भोजन की जो वांछा होना उसको आहार संज्ञा कहा और यहाँ जो आहार मार्गना वाली जो मार्गना है नौ कर्म वर्गनाओं का ग्रहण करना उसको कहते आहार। आहार नाम की संज्ञा तुम्हें याद होगी आहार नामक वर्गना से आहार वर्गना भी आपने बताई ना आहार वर्गना किसको कहते हैं मार्गना अलग वर्गना अलग हाँ औदारिक वैक्रेक और आहारक शरीर जिससे परिणमते तो आहार नामक वर्गना से औदारिक वैक्रेक आहारक तीन शरीर बनते हैं यह भी हमने पढ़ा था। यहाँ आहार मार्गना के प्रकरण में आहारक और अनाहारक इस तरह जीवों के दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद होंगे आहारक और अनाहारक। किसका आहार करना नौ कर्म का नहीं कहा नौ कर्म का ग्रहण करना उसको यहाँ आहार नाम दिया है। उनमें से नौ कर्म वर्गना को ग्रहण करने वाले आहारक जीव है यानी जो जो नौ कर्म का ग्रहण करते वो आहारक और जो नौ कर्म वर्गना का ग्रहण नहीं करते वो अनाहारक। जो नौ कर्म वर्गना का ग्रहण नहीं करते वे अनाहारक जीव है। उपवास करना अनाहारक नहीं कहलाता। अर्यन तो भगवान को आहार होगा कि नहीं होगा हाँ वो मुख वाला वो आहार नहीं होगा तो कौन सा आहार होगा ये नौ कर्म आहार चल रहा है शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं ना वो भी कौन से गुण स्थान में करेंगे तेरहवें वाले करेंगे कि चौदहवें वाले करेंगे हाँ क्यों हाँ देखो जैसे हमने देखा था ना कर्म का बंधन है योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, वैसे योग के कारण ही नौकर्म वर्गणा का लिया जाता है। अभी और भी अनाहार की बातें आएगी तब और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। देखो अनाहारक जीव कौन हो सकते उसे देखते हैं। अनाहारक अभी हमें प्रश्न है, अनाहारक कौन होंगे कि जो नौकर्म को शरीर परमाणु को नहीं लेते हुए कौन से जीव होंगे? हाँ हाँ अनाहारक, परंतु वो कब होंगे? हाँ और चौथे गुण स्थान, क्योंकि वहाँ तो योग का है नहीं, कंपनी नहीं है, तो वहाँ ग्रहण भी नहीं होगा। पहले हमने विग्रह गति संबंधी विस्तृत चर्चा पत्रांक 3 में की थी। रुजु गति से जाने वाले जी, रुजु गति ने सीधी लाइन में, जब कहीं सीधा जाना है ना, समझो जी यहाँ अभी मर गया और सीधा उसके ऊपर उसका जन्म का स्थान है उसी आकाश की श्रेणी में, तो सीधा ही गमन करता है, तो वहाँ एक समय में पहुँचता है, भले वो 14 राज्यों का डिस्टेंस भी क्यों ना हो, सीधा अगर है तो एक समय में पहुँचेगा। समझो अभी यहाँ से यहाँ सीधा नहीं है, परंतु यहाँ जन्म लेना है, पहले यहाँ मरा और यहाँ जन्म लेना है, पहले सीधा गमन करेगा और फिर राइट एंगल में मुड़ेगा, तो एक मोड लेना पड़ता है। तो सीधा जो गमन है उसी समय अन्यत्र जाता है, तो उसको कहते हैं रुजु गति या इशु गति। तो वहाँ उसको बीच में कोई अंतराल नहीं रहता, अब यहाँ मरा और उसी समय में उसने अन्यत्र वो गमन करके वहाँ नौकर्म आहार ग्रहण करना चालू किया, यानी वो अनाहारक नहीं होता, आहारक ही रहता है, यानी उसमें एक समय का भी ज्ञात नहीं पड़ता। तो रुजु गति से जाने वाले जीव उसी समय आहार ग्रहण करते हैं, परंतु एक दो या तीन मोड़ वाले विग्रह गति के जी, अभी एक मोड़ लेकर जाएगा ना जी, तो पहले यहाँ तक गया, फिर एक मोड़ लेकर यहाँ गया, जब यहाँ गया तो नौकर्म का आहार ग्रहण किया, परंतु पहले मोड़ के पहले वाले जो है तब वो अनाहारक रहा, तब उसने शरीर के परमाणु कोई ग्रहण नहीं किया, तब उसको अनाहारक कहेंगे। यानी एक मोड़ वाला जीव एक समय के लिए अनाहारक रहा, दूसरे समय में उसने आहार ग्रहण किया। एक दो या तीन मोड़ वाले विग्रह गति के जीव अनुक्रमे, यानी एक मोड़ वाला एक समय के लिए अनाहारक, दो मोड़ वाला दो समय के लिए अनाहारक और तीन मोड़ वाला तीन समय के लिए अनाहारक रहता है, आहारक ही रहता है। नहीं नहीं, नहीं। संस्कार का कोई यहाँ काम नहीं है, मरण के समय तक वो आहार ग्रहण कर रहा था और मरण के समय वो सारे परमाणु को यहीं पर छोड़ दिया, उसी समय में उसने दूसरे वहाँ ग्रहण किया जहाँ पैदा होना है, एक ही समय में गया ना, तो उसी समय में उसने परमाणु भी ग्रहण करना चालू हो गया, इसलिए वो आहारक ही रहा। हाँ पहले दूसरे तीसरे तीन समय तक वो अनाहारक, चौथे समय में पहुंच रहा है तो वो वहाँ तो ग्रहण कर लेता है। पश्चात आहारक बन जाते हैं, पांचवी लाइन प्रतर। अभी और एक कौन अनाहारक है उस चर्चा है, अभी प्रतर और लोकपुरण प्रकार का केवली समुद्धात करने वाले जीव अनाहारक होते हैं। ये कहने क्या है, केवली समुद्धात होता है ना, क्या है केवली भगवान जो है वो मूल शरीर छोड़े बिना उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो पूरण यानी वो वास वलय छोड़कर पूरे में फैल जाएंगे, और लोक ये प्रतर, प्रतर यानी वास वलयों को छोड़कर, और लोकपुरण यानी वास वलय सहित सर्वत्र ये आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, तो वहाँ अकेला कारमान काय है, इसलिए वहाँ नौकर्म का ग्रहण नहीं होता, यानी शरीर के परमाणु का वहाँ ग्रहण नहीं करते, इसलिए वहाँ अनाहारक है। तो लोकपुरण करेंगे, प्रतर हुआ, फिर लोकपुरण हुआ, फिर प्रतर हुआ, और फिर कपाट हुआ, फिर दंड हुआ, फिर मूल शरीर में आया, तो तीन समय तक वो जीव अनाहारक होंगे, क्योंकि जैसे दसवें वाला ग्यारहवें में जाता है और फिर दसवें में आता है ना, वैसे ये प्रतर वाला लोकपुरण करेगा और फिर प्रतर करके फिर दोबारा वापस आएगा, तो इसलिए तीन समय तक वो अनाहारक रहता है। उसी प्रकार चौदह गुणस्थान के अयोगी जिन भी अनाहारक होते हैं, सर्वसिद्ध भगवान अनाहारक होते हैं, यह बात बताने की तो जरूरत ही नहीं है। उपरोक्त अनाहारक जीवों के अतिरिक्त अन्य सभी जीव आहारक होते हैं, यानी जन्म के समय से लगाकर, यानी जब वो जीव आए कहीं से, वहाँ आते ही उसने आहार ग्रहण करना शुरू किया, और कहाँ तक होगा? मरण के समय भी, उसी समय भी वो ग्रहण करेगा, अनंत परमाणु को ग्रहण करेगा, जबकि उसी समय छोड़ने हैं सारे के सारे। तो मरण के समय तक निरंतर अनंत नौ कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता रहता है, यानी हर हमेशा आहारक रहता है, ये नौ कर्म का आहार कहलाएंगे इसको। अभी हमने समुद्रा शब्द ऊपर पढ़ा था, उसका अर्थ देखते हैं। आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना, यानी मूल शरीर में भी है और बाहर भी फैले है, कारमन और तेजस रूप उत्तर शरीर सही, जैसे विग्रह गति में कारमन और तेजस शरीर रहता है, ऐसे समुद्रहस के समय में भी कारमन और तेजस शरीर उसके साथ आत्मा के प्रदेशों के साथ फैलता है। मूल शरीर से बाहर निकलते हैं और वापस मूल शरीर में पूर्ववत आ जाते हैं, उसे समुद्रहस कहते हैं। सात भिन्न भिन्न प्रकार के समुद्रहस हो सकते हैं, अब ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। वे ऐसे वेदना समुद्रहस, कषाय समुद्रहस, यानी बहुत वेदना हुई तो ये शरीर से बाहर आते आत्मा प्रदेश, क्योंकि वेदना सहन नहीं होती ना, तो मूल शरीर से तीन गुना भी बाहर फैल सकते हैं, तो फिर दोबारा आते हैं, तो उसको कहते वेदना समुद्रहस। कषाय समुद्रहस, बहुत तीव्र कषाय के कारण। वैश्विक समुद्रहस, मारणांतिक समुद्रहस, तेजस समुद्रहस, वो दीपायन मुनि की कथा मालूम है ना, वो तेजस अशुभ तेजस कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट बाहु से वो तेजस शरीर निकला वहाँ, यानी वो और वो सारा जला कर फिर वापस आया शरीर में, और फिर वे भी जल गए और वहीं पर भस्म हो गए, फिर नरक में चले गए। तो ये होता है तेजस समुदाय, ऐसा शुभ तेजस भी होता है, कहीं बहुत भीषण दुकाल वगैरह पड़ा हो तो राइट साइड से, राइट बाहू में से वो निकलता है, ब्लू कलर का होता है, और वो पूरा शांत है, रोग बहुत मरी है, उसकी कोई रोग हो तो उसको सब मिटा कर फिर वापस मूल शरीर में आता है, उसको शुभ तेजस कहते हैं। आहारक समुद्रघात और केवली समुद्रघात, आहारक लेने वे आहारक विद्धि धारे वाले, मस्तक से जो एक हाथ पुतला निकलता है उसको आहारक समुद्रघात कहते हैं। हाँ, क्योंकि मूल शरीर में भी प्रवेश है, ऐसा नहीं कि यहाँ ये डेड बॉडी हो गई वो शरीर वहाँ चले, ऐसा नहीं होता। आत्मा प्रदेश यहाँ भी है और उसके साथ वहाँ भी है, यानी पूरे इसमें फैल कर वापस आते हैं, और दोनों में कंटिन्यूएशन है। ऐसा नहीं कि कुछ आत्मा प्रदेश यहाँ है, कुछ टूट कर आहार के शरीर के साथ चले गए, ऐसा नहीं। वो जैसे इलास्टिक खींचते हैं ना लंबा, पूरा एक है, असंख्यात प्रदेश है पूरा मिलकर, और पूरी ज्ञान की एक पर्याय हो गया। सभी जीवों के होते हैं, हाँ किसी को भी हो सकते हैं, शिव वंशों के, मनुष्यों के, नारकियों के, देवों में तो ऐसी वेदना नहीं होती कि जहाँ समुदाय करना पड़े। ये मारणांतिक समुदाय में भी सहज होता है, वो कहीं सोच समझ कर नहीं कर सकते, जैसे मानांतिक समुदाय है। अभी एक नियम को भी हो सकता है मानांतिक समुदाय, वो कैसे जानते होंगे कि कहाँ जन्म लेने वाले? अभी हम भी कहाँ जानते हैं, अभी मरण का समय आया, किसी का मानांतिक समुदाय हो गया, कोई स्वर्ग में जन्म लेना वाला हो या कोई कहीं वात वलय में जाने वाला हो, तो वहाँ तक जाके आत्म प्रदेश वहाँ पहुँच कर फिर वापस आ जाते हैं। मालूम नहीं होगा, और ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे कोई औषधि की वनस्पतियों को भी टच करके आ जाते हैं, वहाँ भी किसी के ऐसे वो यानी वो दवाइयाँ के रूप में भी ऐसा भी है। वो तो एक्चुअल आत्म प्रवेश फैले हुए ना, यानी शरीर के दो टुकड़े हुए और वो कंटिन्यूएशन है आत्म प्रवेश का। वेदना समुदाय के एक्चुअली वो समुद्धात नहीं, वो तो शरीर ही दूर हमने ये किया ना, जैसे कंटिन्यूएशन है ना आत्म प्रदेशन, आत्म प्रदेशन की कंटिन्यूटी है इन बिटवीन। इस तरह ये सारे 14 मार्गना हमारे हो गए। इस तरह 14 मार्गनाओं का स्वरूप हमने देखा। अब 20 प्ररूपणाओं में से एक उपयोग प्ररूपणा शेष है, वह तो समझने में आसान है। ज्ञान मार्गना के अनुसार जीव को जितने ज्ञान होते हैं, हमने देखे थे ना एट ए टाइम कितने होते हैं, किसी को मतिशुद्ध दो ही होते हैं, किसी को मतिशुद्ध अवधि होते तीन होते, किसी को मतिशुद्ध अवधि के और मनोपर्य चार होते हैं, और किसी को एक ही होता है कौन सा, हाँ। और दर्शन मांगना के अनुसार जितने दर्शन हो सकते हैं उन दोनों को मिलाना, टोटल करना उनकी। जैसे मतिशुद्ध ज्ञानी है तो उसको दर्शन कौन से हो गए, चक्षु अचक्षु भी हो गए ना, या किसी को एकेंद्रीय होगा तो मतिशुद्ध ज्ञान है और दर्शन में अकेला अचक्षु दर्शन है, तो उसके उपयोग तीन होंगे। अभी पंचेंद्रियों को मतिशुद्ध ज्ञान है और दर्शन में चक्षु अचक्षु दर्शन है तो चार उपयोग हो गए। अभी किसी को मतिशुद्ध अवधि ज्ञान है और चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन है तो छह हो गए। केवली के कितने, केवली को कितने होंगे उपयोग, केवल दर्शन और केवल ज्ञान ऐसे। अभी मनोपर्य ज्ञान वाला होगा तो उसको कितने हो गए, मति शुद्ध अवधि मनोपर्य चार हो सकते हैं या मति शुद्ध मनोपर्य हो सकते हैं, तो समझ लो चार है उसके, तो उसको दर्शन कितने होंगे, तीन ही होंगे ना, मनोपर्य नाम का कोई दर्शन नहीं है, तो चक्षु अचक्षु और अवधि वो तो उसको उपयोग, वो अचक्षु दर्शन में आ जाता है, वो मन के द्वारा है तो उसमें अचक्षु दर्शन से ही वो काम हो जाता है। हाँ लेना ना कुमति कुश्रुत, तो उसके साथ दर्शन कौन सा है, दर्शन में तो कु और सु कुछ नहीं होता है, तो चक्षु अचक्षु ही लेना उसमें। ज्ञान मार्गना के अनुसार जीव को जितने ज्ञान होते हैं और दर्शन मार्गना के अनुसार जितने दर्शन होते हैं उन दोनों को मिलाकर जीव के उपयोग कितने हैं उसकी संख्या हम बता सकते हैं। हमने अभी संसारी जीवों का गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति को ये सारे गिना रही हूँ। 20 प्ररूपना, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संयम और आहार और उपयोग इन 20 प्ररूपनाओं द्वारा वर्णन देखा। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है, उनके अलावा अन्य सभी जीवों का वर्णन हमने देखा। अब सिद्ध जीवों में इन प्ररूपनाओं की चर्चा करेंगे। अब सिद्धों के गुणस्थान है क्या, नहीं, ये गुणस्थान से पार है। जीव समास है, नहीं है। पर्याप्ति, प्राण नहीं है, ये द्रव्य प्राण तो नहीं है। संज्ञा है, नहीं, उनकी सिद्ध गति है। अभी गति मार्गना की अपेक्षा सिद्ध गति बताई। इंद्रिय कितने हैं उनके, काय कौन सा है, नहीं है। योग नहीं है, चौदहवें वाले को भी नहीं, तो इनको भी नहीं है। वेद कषाय नहीं है। और अभी ज्ञान मार्गना की अपेक्षा केवल ज्ञान है, दर्शन मार्गना में केवल दर्शन है, परंतु संयम मार्गना समान संयम नहीं है, वे संयम रहित है। संयम नहीं का अर्थ चारित्र नहीं है, ऐसा मत समझना। सिद्धों के तो कायिक चारित्र होता है, संयम यानी वो जो व्रत वाले जो संयम है वैसा उनको, वो यानी मुनियों को जो संयम बताया था वैसा संयम सिद्धों को नहीं है। सिद्धों के लेशा नहीं है, वे भव्य या अभव्य भी नहीं है। सम्यक्त्व में से कौन सा सम्यक्त्व होगा सिद्धों को, कायिक सम्यक्त्व है। वे संगी या असंगी नहीं है, वे अनाहारक है। उनके केवल ज्ञान और केवल दर्शन मिलाकर दो उपयोग है। देखियो जीव संबंधी यह सब जानकारी हमने 20 प्ररूपनाओं द्वारा देखी। यह सब संयोगों का, विभावों का परद्रव्य सापेक्ष कथन है। जीव संबंधी यह संपूर्ण जानकारी हमें केवल ज्ञानी के दिव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त हुई है, ज्ञात हुई है। जिनवाणी का यह संपूर्ण कथन यथार्थ है, फिर भी जब हम मात्र जीव द्रव्य का विचार करते हैं, तब संयोगों का यह सारा कथन व्यवहारने का कथन है, यह बात हमारे ख्याल में आती है। व्यवहारने का ने दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया है। यह सब जानने से हमें जीव के स्वभाव, विभाव, संयोग, मोक्ष मार्ग, मुनि अर्यंत सिद्ध का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इससे भेद ज्ञान की पुष्टि होती है और हमारा ज्ञान समीचीन होता है। व्यवहार है सम्यक ज्ञान का अंश है। इसके बारे में यदि हमारी कोई भ्रांत कल्पनाएं होगी तो उस विपरीत ज्ञान के साथ हमें आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मानुभव नहीं हो सकता। यानी चाहे जिसे मुनि और चाहे जिसे हम भगवान मानेंगे और उनका स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, तो इसे भ्रांत कल्पना के साथ अगर कोई आत्मा का अनुभव करना चाहे तो हो नहीं सकता। जिनवाणी अगाध है, अमृत में अध्यात्म रस से ओतप्रोत भरी हुई है। हम जितना गहरा अध्ययन करेंगे उतना ही उसका रस और आनंद बढ़ता जाता है। परिणाम योग के अध्ययन में मेरा भी अभी प्रवेश ही हुआ है, अध्ययन शुरू हुआ है। तुम दोनों तथा अन्य अनेक वाचों के निमित्त से परिणाम योग का परिचय तुम्हें कराते समय मेरा भी तत्व चिंतन होता रहा, स्व सन्मुखता एवं भेद ज्ञान में बल मिलता रहा। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पीठिका में लिखा है कि उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों का सामर्थ्य, निरोगीपना, सुसंगति, धर्मरूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता आदि का मिलना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। तो प्रत्यक्ष देखते हैं, इतनी साधन सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनता नहीं। तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है, इसलिए तुम्हें हट करके भी तुम्हारे हित के अर्थ प्रेरणा देते हैं, ऐसा टोडरमल जी बता रहे। जैसे बने तैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो, अन्य जीवों को जैसे बने तैसे शास्त्राभ्यास कराओ। जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो, पुस्तक लिखवाना, पढ़ाने वालों की स्थिरता करने आदि शास्त्राभ्यासों के बाह्य कारण इनका साधन करना, क्योंकि इनसे भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है या महत् पुण्य उपजता है। आगे चलकर हमें भी ऐसे शास्त्र साध्य करने का अवसर और मिल परम्परा ने फ्यूचर में भी ये अभी तो पुण्य बनेगा। उससे कोई अभी कोई नौकर भी है वो क्या देखता है कि ये कोई अच्छी बात कर रहे तो वो अनुमोदना देता है खाली या मदद रूप करता है, तो फिर उसके भी ऐसा पुण्य बनता है कि उसको भी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि यही तत्व ज्ञान आगे चलकर अन्य भवों में भी उसको मिले। पंडित टोडरमल जी की सलाह ध्यान में रखकर तुम भी नित्य नियम से शास्त्र स्वाध्याय, चिंतन मनन करती रहो और स्व सन्मुखता पूर्वक आत्मानुभव करके भेद ज्ञान करती रहो, ऐसी मेरी इच्छा है और तुम वैसा करोगी ही, इस बात का मुझे विश्वास है। कल्याणम अस्तु तुम्हारी माँ। तो ये तो हमारे अंत के ये सारे प्रकरण हो चुके, अभी पहले वाले कुछ बाकी है उसको हम देखेंगे कल। हाँ, गति गति की अपेक्षा गति मार्गना में सिद्धों को नहीं लिया था, परंतु ये भी प्ररूपना है ना। गति प्ररूपना में सिद्धों को कौन सी गति है, तो सिद्ध गति है, पंचम गति है। हाँ। दो ही आहारक और अनाहारक। जावानी के ज्ञान से तुझे लो पालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा बेतो।